मेरा आपसे भी सवाल है और खुद से भी यही सवाल दिन रात रहते हैं कि जो कुछ भी मैं पढ़ पढ़ा रही हूँ, क्या उसका असर मुझे अपने ऊपर महसूस होता है? क्या मेरी पर्सनैलिटी दिन ब दिन बेहतर हो रही है? कैसे पता चले? बाज दफ़ा हमें सब कुछ समझ आता है, ये नहीं समझ आता हम कहाँ खड़े हैं, हम कितने पानी में, हमें क्या पता है क्या नहीं, वट एवर। तो मुझे लगता है कि अंदर के सुकून और इंसान को दिन ब दिन नए से नए रास्ते अगर नज़र आने लगते हैं तो ये इस बात की दलील होती है कि वो ज़िंदा है, वो मरा हुआ नहीं है। क्योंकि ज़िंदा इंसान ही खुश भी होते हैं, नाखुश भी होते हैं। अगर मेरी ज़िंदगी पिछले कई सालों से एक ही नहज पे है, बचपन से लेके अब तक जो शख्सियत डेवलप हुई थी, जो पर्सनैलिटी थी, वही है, तो ये चीज़ मेरे मुर्दा होने की अलामत है। तो आइए शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारा आज का दिन कल के दिन से बेहतर कर दे। हमारी पिछली ज़िंदगी जो गुजर गई उससे आने वाले वक्त को बेहतर कर दे। और अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। खुद को सुवारने और खुद को निखारने के सिलसिले में आज हमारा जो सेशन है वो क्या है कि हम अपनी ही सोचों को कैसे अपना दुश्मन बना लेते हैं। हम इस अभी तक मुख्तलिफ सोचें देख चुके हैं कि जो वाकई हमें लगता तो नहीं है, पता नहीं चलता, लेकिन वो हमारी दुश्मन होती है। आज इसमें से हम 12वीं सोच पे आएंगे। आज मैं नहीं दोहरवाऊंगी, आप खुद सोचिए, क्योंकि अगर हर जगह मैंने ही दोहरवाया तो आप खुद से कैसे पूछेंगे। हाँ, एक सवाल कर देती हूँ सुनने वालों से, खुद से भी, कि अभी तक जो 11 11 डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग और थॉट्स मैंने पढ़ी और सुनी, क्या एक एक करके मैंने उस पर काबू पाया, अपना मुहासबा किया? और अगर मैं अपना मुहासबा नहीं कर रही तो फिर मेरी मिसाल उस डॉक्टर की है जो 5-6 साल तक किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़े लेकिन फिर उसके बाद वो हाउस जॉब ना करे, प्रैक्टिस ना करे, हॉस्पिटल के नाम से उसको गम आने लगे, मरीज के नाम पर मरीज का खून बहता देकर वो बेहोश हो जाए। तो याद रखिए, फिर ऐसे लोग के बंदे की पढ़ाई उसको फायदा नहीं देती। ऐसा बंदा फिर नाम की डिग्री लेके तो डॉक्टर बन जाएगा लेकिन उसके काम डॉक्टर्स वाले नहीं है। आज हम 12वीं सोच देखेंगे और वो क्या है, सॉरी, मवाजना। 12वीं साजिशी सोच जो हकीकत में हमारे खिलाफ साजिशें करती है वो क्या है कि हम मवाजना करते हैं। मवाजना किसको कहते हैं? कंपैरिजन को, दूसरों के साथ कंपेयर ही करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। आइए देखते हैं, क्या कभी आपने किसी और के साथ अपना मवाजना किया है? आप कहेंगे बिल्कुल, ये तो रोज का मामूल है। चाहे वो आपका जिस्मानी रंग रूप हो, आपके खदोहाल हैं, आपका पोस्चर है, हेयर स्टाइल है, चेहरे की रंगत है, आंखों का रंग, कद काठ, चलने का अंदाज, बैंक बैलेंस, सोशल स्टेटस, आपकी गाड़ी का मॉडल, घर का साइज, हम तो हर चीज़ में खुद को दूसरों से मनवाने की और मवाजना करने की हू रखते हैं। सच है ना? चलिए, इतनी बात तो हो गई कि हम अक्सर ही मवाजना करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम भी करते हैं तो दूसरे भी कर रहे होते हैं, कंपटीशन, कंपैरिजन, फुलां ज्यादा अच्छा, फुलां कम अच्छा, फुलां बहुत ही अच्छा। कोई हमें अच्छा भी लगता है ना तो साथ ही हमारे दिमाग में कोई दूसरा आ जाता है जो हमें कम अच्छा लगता है। कोई खूबसूरत होता है ना बच्चा, मिसाल एक बच्चा पैदा हुआ बड़ा खूबसूरत है, फौरन पहले से पहले वाले बच्चे या पहली बेटी से कंपेयर करेंगे, उसका रंग दबा हुआ है, इसका गोरा है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, राइट? तो कंपेरिजन तो करते हैं। तो चलिए अगला सवाल कि जब कंपैरिजन करती हूँ तो हार किसकी होती है? यानी क्या मैं हार जाती हूँ दूसरों से कंपैरिजन करते हुए? क्या मैं खुद को हरा देती हूँ? दूसरे लफ्जों में कह लीजिए कि खुद से खुश नहीं होती। याद रखिए, जब भी कोई कंपैरिजन किसी से करेगा या कराएगा तो वो खुद हारेगा। अल्लाह ताला ने इस तरह से इंसान को तैयार किया है कि हर इंसान में कुछ खूबी है, कुछ खामी है, ठीक है, मजमुआ है इंसान। जब आप मुकाबले करेंगे ना, कंपेयर करेंगे, तो हमेशा आपको अपनी खूबियाँ सिमट कर राई जितनी दिखेंगी और दूसरों की खूबियाँ फैल कर पहाड़ के बराबर दिखेंगी। आप कह लीजिए कि मवाजना एक ऐसी जादू की ऐनक है जो आपकी खूबियों को सुकेड़ देती है और दूसरों की खूबियों को फैला देती है। मसलन अक्सर लोग कहते हैं, मुझे भला ये नौकरी क्यों मिलेगी? फिर कभी कहते हैं, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? मैं तो उम्र में भी बड़ी हूँ और मैं तो तलाक याफ्ता हूँ। वो देखो ना फला सबा, वो तो नौजवान है, वो स्मार्ट है, देखना ये जॉब उसी को मिलेगी। और देखना मेरी बेटी का रिश्ता कोई नहीं लेगा, किसी और को। यानी अक्सर हम ये कहते हैं, मेरी जीत का कोई चांस ही नहीं है। सोचिए ज़रा, मैं आपको सासा टाइम देती हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं ये पढ़ाते हुए थोड़ा सा बीच में रुक रुक के सोचती हूँ। एकदम रीडिंग का स्टाइल कर दूँ ना, तो 5 मिनट की बात है, सर से ऊपर से बात गुजर जाएगी। लेकिन आप खुद से पूछें, क्या दिन रात यही ताने बाने तो नहीं बुनती कि मुझे आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा, मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। जो लोग दिन रात अपना मवाजना करते हैं ना, मुकाबला करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो याद रखिएगा, ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो लोग कंपैरिजन में रहते हैं ना, उनको अपनी खूबियां इतनी छोटी दिखती हैं कि एहसास कमतरी में चले जाते हैं। अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया, ये भी नहीं दिया, वो भी नहीं दिया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, हाँ। फिर कभी हम अपनी स्किल्स का मुकाबला करते हैं दूसरों के साथ, मेरे स्पेलिंग ठीक नहीं है, मेरा मैथ बड़ा ख़राब है, मैं तो पागल हूँ, मैं तो नमूना हूँ, मैं तो नमूनी हूँ। आप देखिए अक्सर लोग ऐसे करते हैं। फिर साथ ही हम कहते हैं, मैं वो फरा की तरह, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, और वो लुबना वो तो हमेशा फर्स्ट आती है, मैं कहाँ आऊँगी, और मेरे से कोई लड़का कैसे शादी कर सकता है? कौन सी माँ है जो मुझे अपने बेटे के लिए पसंद करेगी? और मेरे अंदर खूबी भी क्या है कि कोई मुझसे शादी करे? और मेरा कुछ नहीं, और मेरे शौहर मुझसे क्यों प्यार करें? क्या खूबी है मेरे अंदर? आप देखेंगे हम खुद अपने दुश्मन हैं। इन नेगेटिव सोचों की तलवारें लेकर ना हम खुद को ज़िबा कर रहे हैं। तो याद रखिए, इन सोचों का रास्ता रोकिए। ये सोचें आपको जिस दरिया में ले जाती है ना, उसके बहाव को काट दीजिए। बड़ा बड़ा करके लिख लें, अगर आप अल्लाह के इस शाहकार और मास्टरपीस, यानी आप अपना कॉन्फिडेंस बहाल कीजिए। आप क्यों कॉम्प्लेक्स में रहते हैं? आप क्यों सोचते हैं कि आप नहीं बढ़ सकते आगे, आप चेंज नहीं हो सकते? जो बनना था बन गया, जो बेकार किस्म की चीज़ें मेरी थी, अब ये मेरे साथ कब्र में दफन होंगी। आप अपनी ज़िंदगी में इनको दफन कीजिए, एक एक करके निकाल दीजिए। दूसरों से खुद को मवाजना करना छोड़ दें। आप बस आप हैं, अपनी इनफरादियत को पहचानिए, अपने अंदर से खूबियों को निकालें, दिखाएं दूसरों को। आप दुनिया को दिखाएं कि स्टिल आई कैन चेंज माई सेल्फ। अब ये सारी बातें सुनकर आप कहेंगे, नहीं हकीकत में बात तो सच्ची है, कोई काम भी तो मेरे से सीधा नहीं होता। देखिए हकीकत अपनी जगह, इस वक्त हम बाज़ दफ़ा हकीकत से नज़रें चुका कर, हकीकत से नज़रें चुरा कर खुद को ऊपर कर रहे हैं ना। ये मौजू क्या है कि मुझे आपको अपनी खूबियों को लाना है, खामियों को निकालना। ठीक है जी, नहीं थी अच्छी बातें, मेरे अंदर इखलाकी कमी है, मामलात ख़राब है, सुस्ती है, डिलेइंग थिंग है, आप क्या करें? एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊं, शायद आपको कहीं भी नहीं वो मिलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह, और किताबों में ऐसी चीज़ें कम ही मिलती हैं। आप चाहते हैं ना कि आपकी खामियां दूर हो जाए, आप अपनी कुछ हाथों से तंग है, काट फेंकना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं कामयाब हुए, किसी एक शख्स जो आपकी ज़िंदगी में है, उसको रोल मॉडल बनाए। आप इर्द गिर्द ही होंगे, कोई बाहर से दूर वालों को तो हम ज्यादा देखते भी नहीं है ना। खानदान का कोई शख्स, इदारे का कोई शख्स, आपकी दोस्तों में कोई बचपन की दोस्त, कोई आपके बच्चों की माओ, बच्चों के दोस्तों की माओ में से कोई, किसी एक को आइडियलाइज कीजिए जिसको आप देखती हैं और उसमें जो आपकी खामी है उसके ऑपोजिट खूबी मौजूद है। क्या करें आप, उसको कॉपी कर लें, उसको अपना उस्ताद बना लें। ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, इनमें ये खूबी है तो मेरे में क्यों नहीं। और आप उनकी उस खुशी पे, खूबी पे खुश होना शुरू हो जाएं, बजाय इसके कि हसद करें, जलें, कूड़ें, तड़पें, पता नहीं क्या कुछ करें। आपके कोई बात नहीं है, मेरी उस बहन में है ना, तो मैं भी इस पे खुश हूं। जब आप दूसरे की नेमत को देखकर खुश होंगे ना, तो आपको पता है अल्लाह आपको भी तोहफे में दे देगा, बिलीव मी। हम असल में कंपैरिजन करते हैं दूसरों से अपना, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो भूल जाते हैं। तो क्या करें, मवाजना करें, फिर जब डिस्कवर करें कि उसमें ये खूबी मेरे में नहीं, तो फिर छोड़ ना दें। ये तो ऐसे ही हो गया कि आप डायग्नोस करें लेकिन दवा ना फिर खाएं। पता चल गया बीमारी का तो अब इलाज ना करें। आप देखिएगा कि आपके अंदर से एक बहुत खूबसूरत इंसान सर उठाएगा। आप लिखिए जरा अपनी उम्र, शऊर की उम्र, 10 साल कम कर दें, वैसे भी खुशी होगी सोच के। शुरू के 10 साल निकाल दें, हालांकि मेरा ईमान है कि 10 साल में जो रूट्स पर्सनैलिटी की जा चुकी होती है ना इंसान के अंदर, वो सारी जिंदगी पे असरअंदाज होती हैं। लेकिन चलिए, हमारा कसूर नहीं था, जैसे ब्रॉट अप हुए, जो माँ बाप ने कहा किया हो गया। अब 10 के बाद से आज तक की अपनी उम्र लिखिए, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, इतने ही होंगे ना अमूमन। अब आप अपनी इन 50 सालों की अचीवमेंट लिखिए एक दूसरे पेज पे। अपने नोट्स में एक कॉलम बनाएं, पहले 10 साल खेल कूद, बुनियादी तालीम, कुछ किरदार साजी, कुछ आते डिवेलप हुई, 11वें साल से लेकर आज तक मैंने क्या अचीव किया, लिखे। मैं मैट्रिक किया, FA या FSC की, BA या BA ऑनर किया, BSc की, मास्टर्स किया अगर अल्लाह ने तौफीक दी। फिर आपने कुछ एक्सपीरियंस करने शुरू किए, फिर शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए, ससुराल का एक बड़ा सा खानदान है। आप अपनी अचीवमेंट्स लिखिए, जो खूबियां आप में हैं या जो अल्लाह ने आपको अपने इनाम और अपने तोहफे के तौर पे दी ना, उसको लिखिए। फिर आप नीचे एक और लाइन लगा के लिखिए सवाल खुद से, अब अगली जिंदगी में क्या करना चाहती हूँ। बच्चे तो अब आपने और लेने कोई नहीं, अल्लाह देना भी चाहे तो लोग लेते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें ताकत नहीं है। और दिस एंड दैट, ये एक अलग मौजू है, फिर कभी इस पे बात करेंगे अगर आप याद दिलाना। ये भी एक हमारा खुद से हार मानने का तरीका होता है। जो अल्लाह की बातों पे यकीन रखता है ना, वो कभी मायूस नहीं होता और कभी अपने हाथ में ऐसे मामले नहीं लेता। इससे भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। बहरहाल, अब आप अपनी अगली जिंदगी के प्लान बनाएं। अब आपका प्लान है, बस आप में से हर एक का प्लान फर्क होगा ना, या चलिए कह लीजिए कि जो क्लास में बैठे हैं उनका प्लान दीनी हिसाब से सेम हो सकता है, कोर्स पूरा करना है, आगे बढ़ना है, खूब से खूब तरक्की तलाश, और इसी तरह से फिर आगे इंसानियत की खिदमत। लिखे क्यों नहीं, बढ़ सकती हैं आप। देखिए, जो आप सोचते हैं ना अल्लाह ताला वो करते हैं, सीधी सी बात है, माने ना माने, आप अपने रब से खुद बनवाते हैं। एक जुमला लिखे, जब अल्लाह पर ईमान बढ़ता है ना, जब अल्लाह पर ईमान बढ़ता है तो उस पर मान भी बढ़ जाता है। ईमान और मान साथ साथ बढ़ते हैं। इतना मान आपको अपने रब पे होगा, आप कहेंगे मेरा रब जरूर मुझे बख्शेगा, देखना देखना मैं गलत काम करी लेकिन उसने माफ कर देना, देखना मेरा रब मुझे जन्नत में ले जाएगा। अब इसको समझिए जरा एक मिसाल से। बच्चे का ईमान है ना कि ये औरत चाहे काली है गोरी है, जैसे ये मेरी माँ है, ईमान है ना। एक औरत जिसको बचपन से वो बच्चा देखता आता है ना, लोगों ने कहा, उसकी फितरत ने कहा, उसके खून ने जोश मारा उस औरत को देखकर, उसको बताइए मान माँ है। बताइए जब माँ पर ईमान आता है तो मान बढ़ता है। मैं जो भी तंग करूंगी आखिर माँ, गले में बाहें डालूंगी उसने एकदम, गले से लगा लेना। एक दफा हंस के देखूंगी ना तो माँ की आंखों से आंसू भी निकल आएंगे और साथ ही मुस्कुरा देगी। कितनी भी गुस्से में बैठी रूठी क्यों ना हो, इसने मान जाना। धमकियां दे दे जो मर्जी कर ले, आज खाना नहीं दूंगी, देखना इसके गले से निकलेगा ही नहीं, अगर वो मेरी माँ है तो। है ना मान। तो जब एक माँ के ऊपर मान है, और माँ की बेचारी की क्या शान है, तो जिसको अपने रब पर ईमान आ गया, क्या उसको मान नहीं होगा। हाँ, माँ का दिल ना थोड़ा हो, कोई ज्यादा ही नाफरमानी ना की हो, जिसके बाद फिर एक इंसान मुंह भी छुपाता है, उसको पता है आज तो माँ भी बड़े गुस्से में, इसने इसकी परवाह भी नहीं करनी कि मैं इसकी बेटी हूँ या इसका बेटा हूँ, इसने आज मेरी शिकायत लगाई देनी है। वो भी तो माँ ही होती है ना जो खुद अपने बच्चों को उठा उठा कर गले से पकड़ कर किसी के सामने ले जाती हैं, और बाज तो खुद अपने बच्चों को पुलिस के हवाले करती हैं कि पकड़ो इसको ले जाओ, इस मेरी जान छुड़ाओ इससे। तो बस अपने रब पर मान पैदा करें, फिर देखिएगा वो आपके लिए जो रास्ते खोलेगा ना, कभी आपने उनका तसव्वुर नहीं किया। तो आप अपने रब के साथ ताल्लुक को मजबूत करें, जितना आपका अपने रब के साथ प्यार बढ़ता जाएगा ना, उतना आपके काम आसान होंगे। आज से ये दुआ शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपने फुलां को जो नेमत दी है मुझे भी दे दे, अल्लाह आपने फुलां से ये खिदमत ली है मुझसे भी ले लें, अल्लाह ताला मुझे नहीं अच्छी लगती अपनी ये आदत, प्लीज आप मेरी जान छुड़ा दे इससे, अल्लाह ताला ये मेरे हालात मुझे नहीं पसंद, ये हालात वैसे मैं खुश हूँ कि आपने दिए हैं, दैट्स फाइन, अल्लाह ताला आप प्लीज बदल दें, मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, मुझे ये चीज़ बॉदर करती है, मुझे ये बीमारी सताती है, मुझे शौहर का ये गम फोकस नहीं होने देता, मुझे भाई का बहन का ये गम परेशान रखता है, अल्लाह ताला प्लीज आप इसको दूर करें मेरे से, प्लीज अल्लाह, लाड करके प्यार करके आप देखिएगा कि आपका रब ऐसे अनजाने रास्ते खोल देगा कि जिसके बारे में आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा, ना मेरे बस में कुछ है ना आपके बस में कुछ है सब कुछ उसके बस में। फ़ालुल लिमा युरीद, है ही वो जो चाहे वो करे, वो मा तशाउन इल्ला इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, वो नहीं होगा दुनिया में जो तुम चाहते हो, वो होगा जो रब्बुल आलमीन चाहता है, बस आप उसको पकड़ लें। अगर आपके कामों में स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना, तो मान लीजिए कि आपने अल्लाह की मदद को अपने से दूर किया हुआ, फिर आप खुद कोशिशें करें बदलने की, खुद को आप खुद करें मुजाहदे, मेहनतें करें, किताबें पढ़ें, कोई एक्सरसाइजेस करें कि मैं बदलने लगी हूँ खुद को, तो आप एक मस्कीन बच्चे बन के खड़े हो जाएं, शक्ल नीचे करके मुंह झुका के, अल्लाह जी मुझे बदल दें, अल्लाह जी प्लीज मेरी ये आदत निकाल देना, कितनी शर्मिंदा होती हूँ, अल्लाह जी आपको पता है मैं कितनी ज्यादा तकलीफ महसूस करती हूँ अपनी इस आदत से, तो आप प्लीज मुझे बदल दें, और मुझे तौफीक भी फिर आप ही दे दें, अल्लाह जी सब कुछ आप कर दें। आप देखिए अक्सर बच्चे जो होते हैं ना, माओ के सामने बच्चे ही बने रहते हैं, ये आपने भी देखा होगा, माँ के सामने आकर बड़े बड़े लोगों को बच्चा बनते देखा है ना, लाड करते हुए भी वैसे भी, तो माँ के सामने जैसे बच्चा बनते हैं ना, तो रब के सामने बंदी बन जाए, बच्ची बन जाए, बच्चा बन जाए, मेरे रब मैं हारी तू जीता, तूने जिसको जो नेमत दी है ना मैं खुश हूं, मैं कंपेयर करके दूसरों को दुखी नहीं होंगी, बल्कि अपने अंदर और खूबियां पैदा करूंगी। आप देखिएगा अल्लाह आपके लिए नामुमकिनात को मुमकिन में बदल देगा, आपसे अल्लाह वो खिदमत ले लेगा जिसका आज से 5 साल पहले आपने सोचा भी नहीं होगा। आप पर मैं जरा सब अपनी जिंदगी को सोचें पीछे से कहाँ खड़े थे। किधर लेकर जाएंगे, कहाँ थे? चलिए, अब आप पिछले 5 साल की कोशिशें और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ ग्रूमिंग को सोचें और लिखें। बात समझे? जब आप खुद को इस चीज के काबिल करेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। आज से 6 साल पहले आपके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अल्लाह आपसे ये काम लेगा। ले लिया क्यों? 5 साल पहले आपने कोर्स शुरू किया था, फिर कुरान पढ़ा, सबीलुल जन्ना किया, पूरे फोकस्ड होकर तफसीर की, तर्जमा याद किया, फिर भी लगा कुछ नहीं आया, कच्चा पक्का। फिर नूरुल्ला नूर किया, फिर नूरुल्ला नूर करते हुए कई अप्स एंड डाउन्स आए, ऊपर नीचे हुए, लेकिन लगी रही, जमी रही। फिर साथ ही खिदमत करनी शुरू कर दी, वॉलंटियर शुरू कर दिया। आपको पता भी नहीं था आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं। ये इस कुरान का एजाज है कि जब ये हमारे दिल पर पड़ता है ना, तो हमारे अंदर की सोई हुई सलाहियतें जागाती, जग जाती है। सॉरी, एक मिनट दीजिएगा। तो खुद को जाया ना करें। खुलासा क्या है इस पॉइंट का? कि नेगेटिव सोचों में से ये सोच निकाल दीजिए कि मैं दूसरों से कमतर हूं। दूसरे हों जो मर्जी, मुझे क्या लगे, बस मुझे तो अपनी जिंदगी जीना है। और जब मैं अपनी जिंदगी खूबसूरत तरीके से गुजार लूंगी तो मुझे फिर किसी और की कोई परवाह नहीं है। जब मैं अपने आप को निखारने की कोशिश करूंगी, अल्लाह ताला मेरे साथ बेहतरी का मामला करेगा। तो आखिरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं, एक और नेगेटिव सोच जो हमारी जिंदगी से सत छीन लेती है। सत समझते हैं? एक्सट्रैक्ट, खूबसूरती, खुशी। हम अल्लाह का एक मास्टरपीस है और हम अपने आप को सस्ता बेच के आ जाते हैं, जाया करके आते हैं घरों में, बेकार सब हौकताव करके हम दुनिया को अपना आप दे आते हैं। तो 13वीं सोच, 13th नंबर की सोच, और वो क्या है? मेरा जिंदगी से निभा ही नहीं हो सकता। आई डोंट वॉन्ट टू लिव मोर, मैं और जीना नहीं चाहती, मैं नहीं खुश हो सकती, मेरी जिंदगी बेकार है, बिल्कुल ऐसे ही बेतुके कामों में लगी हुई हूं। और इन सारी चीजों में लग के मैंने यही नतीजा निकाला कि मैं नहीं जी सकती, यानी और जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। और ये वो जहर आलूद आवाज है, जब आपके अंदर इसकी लहरें जाती हैं ना, तो आप हथियार डालने के करीब हो जाते हैं। अब मैं और नहीं सह सकती, अब मेरी बस हो गई, मैंने हाथ खड़े कर दिए, हैंड्स अप। और आपको तो इससे भी ज्यादा एक खतरनाक आवाज हमारे अंदर से आती है, और वो क्या है? कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। यानी एक बंदा किसी दूसरे पर इतना डिपेंड करने लगता है कि उसका ख्याल क्या है कि मैं कमजोर हूं, नातवां हूं, लागिर हूं, मुझमें जिंदगी का सामना करने का दमखम कोई नहीं। तो लिहाजा जब तक कोई दूसरा मेरा साथ नहीं देगा, मैं और नहीं जी सकती। और ऐसा कब आता है? जब हमें हमारा अचीव करने वाला जो एक गोल होता है ना, वो नहीं मिलता। आपने सोचा आपने वेट लूज करना है, कोशिश की, शुरू की थोड़ी, 1, 2, 4, 10, 12, 20, 25 दिन, फिर कहते हैं नहीं, मेरा वेट नहीं लूज हो सकता। चले, साथ ही आपके अंदर एक सोच आएगी, मैं कभी नहीं, मैं पतली हो ही नहीं सकती। अब आप कभी भी नहीं होंगे। मेरे साथ कल कुछ शेयर कर रहा था, कल या परसों, इधर अटलांटा में, उन्होंने कहा कि एक इंग्लिश बुक है और नॉन मुस्लिम है लिखने वाली, बल्कि बुक भी रखी होगी इधर ही कहीं घर में। तो वो कहती हैं कि जो नॉन मुस्लिम है लेकिन जो उसने लिखी है ना वो बातें, उसको पढ़ के ऐसे लगता है कि उसाज़ा आप जो हमें शुक्र की बातें बताती हैं ना, वो उसने लिखी है। जिस बात के अंदर से एक बात मुझे बहुत ही अपील की, उन्होंने कहा कि साइंटिफिकली इस बात को प्रूव किया कि मसलन आप एक काम को देखते हैं, मिसाल उस औरत ने क्या दी हुई है बिल की, मसलन आपके घर में बिजली का बिल आया और बहुत ज्यादा आ गया, तो कहती है जब आप बिल देके कहते हैं ओफ माय गॉड टू मच, इट्स वेरी हार्ड कि मैं इसको पे करूं, कहती जूं ही आप बोलते हैं ना, तो आपके बोलने या इवन आपकी सोचों में से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो आपके इर्द गिर्द वो एनर्जी छाएगी, तो फिर बाहर फितरतन अल्लाह ने क्या सेटअप किया है ये तो अब अगला आने वाला वक्त बताएगा। कहती हैं कि ऐसी रेस पैदा हो जाती हैं कि फिर वो उस काम को मुश्किल से मुश्किल कर देंगे। कहने लगी कि आपके लिए उस बिल को पे करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप अधमुए हो जाएंगे, आप कहेंगे थक गई, इतने बिल हैं, मारो इसको, ये करो। अक्सर देखिए जो लोग पैसे पे घरों में झगड़े कर रहे होते हैं, बच्चों पे, बीवी पे, मियाँ पे, जो भी है, तो आप देखिए ऐसी नेगेटिव बातें होती हैं ना, तो वो काम मुश्किल होता है। फिर उसने उसका ऑपोजिट लिखा हुआ है कि मिसाल है आपको बिजली का बिल आया, आपकी उम्मीद से ज्यादा आ गया, और आप उसको देखिए और कहते हैं मिसाल है कि बिजली का बिल $500 आ गया। माशाल्लाह, बिजली कितनी बड़ी नेमत है, मैंने इस बिजली से क्या कुछ किया। अच्छा, अगर बिजली ना होती तो मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल होती। कहती है आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, उस बिल को देखकर बातें करें, ऊंची बोलें, यानी ये बातें बोलें। कहने लगी जो ही आप ये कहेंगे कोई बात नहीं, अगर ये बिल आया है तो मैंने इससे फायदे भी तो कितने उठाए हैं, और हो सकता है माली तौर पे भी आपने उस बिजली को इस्तेमाल करके कुछ मनी कमाई हो। बस अगर आपने कंप्यूटर यूज किया तो कंप्यूटर में बिजली गई तो उस कंप्यूटर से आपने हो सकता है हजारों कमाए हो, या आपने किसी को फायदा दिया हो, है? तो कहने लगी जब आप पॉजिटिव बातें सोचेंगे ना, ये वो, तो उसके बाद आपके अंदर से एक एनर्जी रिलीज होगी, लहरें निकलेंगी, उसका फायदा क्या होगा, आपके लिए उस $500 के बिल को पे करना इंतहाई इजी हो जाएगा, आपके हालात और सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे। अब वो जो सुना रही थी तो मेरे जहन में एक ही लफ्ज आया था, बल्कि एक जुमला कह ले आयत का, लाइन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, सूरत इब्राहिम आयत 7-8 के अराउंड है, तुम शुक्र करोगे नेमत को बढ़ा दूंगा, वाला इन कफर तुम इन नाजा भी लशदीद, ना शुक्री कर लो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। तो याद रखिए जिंदगी से ये जुमले निकाल दें, चाहे आपके हालात जिसको आप कहना चाहिए कि जान बलब आ जाए, गंभीर, मुश्किल, दिल खराश, आपको कोई जोर का धचका लगे, अचानक खड़े खड़े हालात बदल जाए, सेहत खराब हो गई, शौहर को कुछ हो गया, बच्चों को कुछ हो गया, माँ बाप को कुछ हो गया, लेकिन सोचिए जिंदगी से नाराजगी से क्या मिलेगा, शिकायत करने से क्या मिलेगा, आप दुनिया के कामों से दूर होकर डिप्रेशन के अंधेरों में जा रहे हैं, आपको क्या मिलेगा। और बस सफर जिंदगी में कोई इंसान जब छोड़ता है ना आपको, उस वक्त तो बस हमें लगता है कि हम अब जिएंगे ही नहीं, कोई मरता है, मैंने अक्सर लोगों को सुना है मैं जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी, आज भी जी रहे हैं। आप क्या सोचे, कोई अल्लाह ना करे ऐसी तकलीफ आपकी जिंदगी में आए ना, तो क्या सोचे, कोई बंदा याद कीजिए, कई साल पहले आपने कितने लोगों से कहा होगा देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, लेकिन आज आप उनके बगैर बड़े मजे से जी रहे हैं। हाँ, कभी कभार आप उनको याद करके अफसरदा जरूर हो जाते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी रुकी तो नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी दोस्तें होती थी ना, अब छोटे छोटे दिल, छोटी छोटी दोस्तियां, कुछ दोस्तियां ऐसी थी, कुछ दोस्त ऐसी थी कि सोचते थे इनके ऊपर जी नहीं सकते। कभी मुझे अच्छी तरह याद है कि हम एक जगह रहते थे तो मूव हो गए थे, सिर्फ एक कॉलोनी से निकलकर दूसरी में चले गए, तो जो हमारे नेबर में वॉकिंग पे रहती थी ना फैमिली, मुझे आज भी याद है कि मैं सोचती थी हाय हम कैसे जियेंगे। फिर इसी तरह एक दफा हमारे वालदेन जो ना हज पे गए, तो वहां से एक बड़ी अच्छी फैमिली के साथ दोस्ती हुई, वो हमसे कोई 10-15 मिनट 10 मिनट की ड्राइव पे रहते होंगे उस दौर में के हिसाब से बता रही हूँ। अब क्या हुआ कि वो बहुत ही अच्छी आंटी थी, हसमुख और टू मच फ्रेंडली, अल्हम्दुलिल्लाह कपल था उस वक्त उनकी एज ऐसी होगी को 40s 50s में। अच्छा, अब क्या हुआ कि आना जाना शुरू हो गया ना, हम बच्चे थे साथ जाते थे माँ बाप के, ईद के दिन उन्होंने अपने घर में एक खुला, वो कहते हैं ओपन हाउस था, बड़ी बड़ी सीखें, कबाब और बारबेक्यू, और बकरीद के दिन शाम को सारा शहर खानदान जमा हो रहा है और गरम गरम चांपे और ये हो रहा है और खा रहे हैं और मजे, खुले दिल की खातून थी, जैसे आप कह ले कि खिलाने पिलाने वाली और खुश रहने वाली। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, अब जाहिर क्या उम्र होगी उस वक्त, अर्ली टीन कह लीजिए, तो मैं क्या सोचती थी अच्छा, अगर नसरीन बाजी जो कि मेरी ख्याल में तो सबको बूढ़ी थी ना, लेकिन बचपन में ऐसे ही ख्याल आता है। अच्छा, अगर ये मर गई, अगर इनको कुछ हो गया, हाय तो हम कैसे रहेंगे। यानी आपको ये बताने लगी हूँ कि जिंदगी में आपको कई ऐसे लोग मिले होंगे जिनको आपने कहा होगा कि मैं आपके बगैर नहीं जीऊंगी, लेकिन आप जीते हैं। मैं उस एक औरत को भी तसव्वुर में इस वक्त देख रही हूँ जो अपने शौहर की के जनाजे के साथ लटक गई। जब डेड बॉडी को उठाने के लिए अंदर आए तो वो लटक गई, कहती मैं नहीं जाने दूंगी, मैं साथ जाऊंगी। उन्होंने हटाया नहीं, हटी, आके खड़ी हो गई। जब मर्दों ने आकर चारपाई उठाई तो वो थोड़ा लटकी, बस घर की वो चौखट तक बाहर गई। बोले कि वो आज भी जिंदा, मुझे नहीं पता वो कितनी खुश है या नहीं है, लेकिन याद रखिए कभी कोई किसी के साथ नहीं मरता, आपको अपने साथ जीना होगा। जब कभी आइंदा आपको लगे ना कि मैं और नहीं जी सकती, मैं नहीं सह सकती, मेरी बस हो गई, मेरे हालात अप्स एंड डाउन हो गए, ये तो अब हद हो गई, तो खुद से पूछिए कि किस बुनियाद पे आप इससे अपनी बस और हद करार देते हैं। इससे कहीं ज्यादा कुछ सहकर कितने लोग दुनिया से चले गए, फिर भी आज भी कई ऐसे हैं आपसे ज्यादा बुरे हालात में होंगे, शानदार जी जिंदगी जी रहे हैं। मेरे जहन में एक ऐसी सिस्टर आ गई, वाकई कहा जाए कि दुनियावी लिहाज से अबतर हालात है, कोई कल भी ना सीधी जिसको कहे, ना शौहर से सुखी, ना बच्चों से सुखी, ना बेटे से, ना बेटी, ना पेरों पे मैके से। और वो कभी बैठ के अपने दुख सुनाती थी ना, दुख तो मेरा ये ना कि जिक्र करना, वो ये हो गया, अब ये, फिर उसका देख जोर का कहका लगाती थी, इतना हंसती थी कि उनका पेट भी हिलता था। तो फिर कहे चलो लाओ चाय पीते हैं, ये हाल था उसका। यही करें आप भी, बेवकूफ बन जाएं, सोचना छोड़ दें। और मैं सोचती हूँ कि जब आपकी नजर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा पे होगी ना, आप कभी भी बुरे से बुरे हालात में डोलेंगे नहीं। आपकी हद का आपको पता ही नहीं है, हद तो आपको तब पता चले जब आप हद से बाहर निकले। आपने तो कभी अपनी हदों को चैलेंज करने की कोशिश ही नहीं की। और एक कीमती बात लिख लें, नोट कर लें, आप सारी जिंदगी कभी अपनी हदों को छू भी नहीं पाएंगे। आप नहीं पास है, आपको पता ही नहीं आप में कितनी बर्दाश्त है, जैसे इलास्टिसिटी होती है ना, खुलती जाती है चीजें वक्त के साथ। तो जो मर्जी कर लें, अपनी हदों का तायुन आपसे कभी नहीं होगा, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि अल्लाह ने आपको क्या क्या ताकतें अता की हैं। और ये भी एक सोच मेरे जहन में आ गई, जब हम छोटे होते थे, ये कह लें जब हम बच्चे थे या बड़े होने वाले थे, तो मैं सोचती थी किसी को किसी दुख में देखकर, हाँ ये कैसे बर्दाश्त करता है, अगर मैं जब ये सब, मैं अगर मेरे साथ ऐसे हों हालात तो मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती। फिर बाज वह बंदा है उससे भी बड़ी बातें बर्दाश्त करता है। हमारे स्कूल में एक सिस्टर थी, हमारी दोस्त थी, तो उनके वालिद की डेथ हो गई। मुझे याद है शायद मैट्रिक में थे हम लोग, बहुत हमारी क्लोज फ्रेंड थी, ग्रुप की फ्रेंड थी, तो उनके वालिद की डेथ हुई ना, काफ़ी क्लोज एसोसिएशन था। तो मैं ये सोचती थी उसका नाम लेकर, ये कैसे जिंदा रहेगी, ये तो मर जाएगी। और उस वक्त वही बचपन की सोचे मासूम सी, मेरे अब्बू को कुछ हुआ मैं तो नहीं जिंदा रहूंगी, तो देख लीजिए आज भी जिंदा। फर्क पड़ जाता है, आपके अंदर अल्लाह ने बहुत बर्दाश्त रखी। एक बड़ों से बात सुनी हुई है कि जब अल्लाह कोई गम देता है ना, तो उस गम को सहने की ताकत भी दे देता है। कराची में हमारे एक फैमिली थी, तो बहुत ही डिसेंट, कभी दुखों में गमों में भी हमने उनको रोते नहीं देखा, बस यही कहती थी अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म। तो उनकी बात मुझे याद आ रही है, कहती थी कि जब अल्लाह कोई गम डालता है ना, तो 40 दिन पहले से ही दिल पे सब्र की सिल रखना शुरू कर देता है, समझे। यानी अल्लाह पहले सहारा देता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है, फिर गम देता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो आपका रब है। तो आपको किसी मुश्किल में गए जाने से पहले अपनी हद पता ही नहीं होती, तो खुद को पीछे डालने वाली, लेट डाउन करने वाली सोचों को लास्ट वार्निंग दे दें, आखिरी वार्निंग दे दें, ये जहरीली सोचें। अब देखें हमने 13 सोचें पढ़ ली ना, नेगेटिव थॉट्स, इन जहरीली सोचों को तलफ करें। अपने ख्वाबों की फसल में पलने वाली खतरनाक सोचों की जड़ी बूटियों पर खुद एतमादी का स्प्रे कीजिए जी। अपनी सलाहियत, इस्तकामत, एतमाद और कामयाबी की पैदावार बढ़ाने के लिए इन आलूदा सोचों की सप्लाई लाइन काट दें, जहरीली सोचों को उल्टा लटका दें, डंडे से कूटें इनको, मारें इनको, थप्पड़ मारें इनको, और अपने ख्वाबों की सरजमीन को बंजर होने से बचा लें। अब आप कहते हैं ये सारी सोचें पढ़ तो ली, करें क्या? आखिरी वर्ड्स हैं इस टॉपिक के, करें क्या? इन साजिशी आवाजों के खिलाफ जंग कैसे करें? बहुत आसान हल है। आइंदा जब कभी आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ दे या नाखुशगवार वाकया पेश आए, तो इस लम्हे की कैफियत को कोई नाम दे दे। मसलन गुस्सा, तौहीन, नफरत। समझ आ रहे हैं? यानी दोहरा देती हूँ, जब कोई जिंदगी में तकलीफ दे या नाखुशगवार वाकया आए ना, तो उस वक्त आपकी जो फीलिंग्स हों उसको कोई कैफियत दे दे। मसलन मैं गुस्से में आ गई थी, मेरी तौहीन हुई, या नफरत वगैरह। हाँ, इस कैफियत की शिद्दत को जांचने के लिए इसे 10 में से आप कितने नंबर देंगे? मसलन इस वाक्य के बाद जो भी हुआ, कौन सा आपको दुखी करने वाला, आपके अंदर से कौन सी नेगेटिव थॉट निकली, किस साजिशी आवाज ने सरगोशी की? फिर ढूंढिए इन 13 में से किस किस्म से उसका ताल्लुक है। फिर हर आवाज के जो नेगेटिव असरात आप अपनी शख्सियत पे फील करते हैं ना, उसको आउट ऑफ 10 मार्क्स दीजिए। ये सोच कितने कितनी इंटेंसिटी की थी, शिद्दत क्या थी इसकी, जैसे वो जलजले की शिद्दत नोट करते हैं ना, इस तरह इस शिद्दत को नोट करें। 10 में से 10 यानी बहुत शदीद सोच थी, 9, 8, 7। चलिए अब आप फर्ज करें कि ये वाक्य आपके साथ नहीं बल्कि आपकी किसी दोस्त के साथ पेश आया, ये जहरीली आवाजें भी आपके नहीं उसके कानों में पड़ी, यानी अपनी जगह किसी और को रख ले, इसने आपके आपसे मशवरे की खातिर आपको ये सब बताया, यानी आपके किसी दोस्त के साथ ये सब कुछ हो गया। अब आपने ये 13 किस्म की बातें सीख ली, तो क्या आप अपनी दोस्त को कोई अच्छा मशवरा देंगी? खुद से पूछिए, क्या मैं किसी की मदद कर सकती हूँ इन 13 नेगेटिव सोचों को पढ़ने और जानने के बाद? क्या मशवरा देंगी आप इन दुश्मन आवाजों के जवाब में? उसको क्या सिखाएंगी आप? उसको कैसे सेटिस्फाइड करेंगी? क्योंकि खुद को करवाना और बात है और दूसरे को कराना और बात है। आप उसको भी वैसे ही टैकल करेंगी जैसे आप खुद को करेंगी। अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करें, हिकमत अमली इख्तियार करें, कोई काम करने से पहले 10 दफा सोचें ताकि बाद में ना पछताना पड़े। खुद को कहकर देखिए, आप देखेंगे क्या आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर से ये चीजें कम हो जाएंगी। अगर पहले आउट ऑफ 10 से 10 थी, तो अब 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पीछे करते जाइए, और आप देखेंगे जिस चीज का हमें एहसास हो जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो हमारी जिंदगी से निकलती है। तो आज से खुद को अंडर इन्वेस्टिगेशन रखें। दूसरों को क्या मशवरे देती हूँ? ये दोस्तों को भी तो हम उल्टे सीधे मशवरे देते हैं ना। अच्छा, बाद जब हम दूसरों को बहुत बढ़ के मशवरे देते हैं, जैसे शायद इस वक्त मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन जब अपने ऊपर पड़ती है तो लग बता जाता है। तो दोनों को टैकल करें, आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, अंडर इन्वेस्टिगेशन रखें। आप देखेंगे हर जहरीली सोच दुम दबा के भागने लगेगी, या तैयारी तो जरूर करेगी। एक मिसाल लीजिए, मसलन एक शख्स है, उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की। अब उस बीवी से प्यार भी बहुत करता है, लेकिन अब लड़ाई हो गई। ये तो घर घर की कहानी है ना, मोहब्बत वाली शादियों में भी लड़ाइयाँ होती हैं। अब क्या करें? बेगम रूठ के मायके चली गई, और आपने भी सोच लिया कि मैं तो नहीं लेने जाऊंगा। हाँ, अब आप सोचिए कि जब आप ये सब वाक्या अपनी जिंदगी में ले आए, है आपके लिए बहुत नाकाबिले बर्दाश्त कि वो कल तक की महबूबा आज रूठ के मायके पहुंच गई? बेगम से नाराजगी, आप सोचते थे मैं तो इसके बगैर जी नहीं सकता, जज्बाती है, टॉर्चर भी है, इमोशनली आपको टॉर्चर भी मिला, डिप्रेशन भी होगा, गुस्सा भी आएगा, और सबसे बड़ी बात है अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होगा ना, लेट डाउन किए जाने का एहसास। अब आप क्या करें, अपने आप को नंबर दें, मेरे इस हालात से मुझे क्या हुआ, मुझे कितना गुस्सा आया, 10 में से नंबर दीजिए। चलिए 9, मैं इस वाक्य पे कितनी डिप्रेस हूँ या कितना डिप्रेस हूँ, हर एक अपने ऊपर कयास कर ले। चलिए 10 में से 7, ये मुझे अपने आप को रुसवा किए जाने या इग्नोर किए जाने का एहसास कितना कुछ सता रहा है। चलिए 10 में से 9, अब ये सारी बातें आपके दिल दिमाग को वीरान कर देंगे, हैरान हो जाएंगे आप, परेशान होंगे। तो अब आप अपने आप से कुछ जुमले बोलें, पहले तो आप नेगेटिव बातें बोलेंगे ना, हाँ ये है ही मेरा कसूर, अब वो मुझसे पहले से मोहब्बत नहीं करती, इसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये तो हमेशा ही लड़ती हैं मुझसे। आप अपने शौहर पे ले लीजिए अपने ऊपर, औरतों को और मर्दों की बात समझ आ जाती है। हर वक्त इस तरह सोचिए, खुद की बात एक दोस्त की तरह सुनिए, आप देखिए आपके अंदर से क्या आवाजें आती हैं। फिर आप पता क्या करें, मेरा ख्याल है कसूर हम दोनों का, मुझे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैं ही चुप कर जाती और मैं ही अपनी गलती मान लेती। नहीं, ये नहीं हो सकता वो मुझसे मोहब्बत अपनी करती या करता, अगर मैं करता हूं तो वो भी करता है। इस तरह आप सेल्फ टॉकिंग करें, खुद कलामिया करें, क्वेश्चनिंग करें। फिर इसी तरह से आप सोचें कि अच्छा, अगर मैं उनकी नाराजगी से दुखी हूं तो क्यों खुद को अजियत दूं, मैं क्यों ना अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं। इस तरह से आप जंग करें अपने साथ, आपको तो साइकाट्रिस्ट यही कुछ कराते हैं और हजारों डॉलर ले लेते हैं आपसे। क्या वाकई वो मुझसे हमेशा झगड़ती हैं? आप अपने शौहर पे ले, आप कहते हैं मेरे शौहर बहुत लड़ाके हैं, झगड़ते हैं, तो आप लिखिए क्या हमेशा झगड़ते हैं, क्या उन्होंने साल में 365 लड़ाइयां की, क्या दिन के 24 घंटे वो लड़ते रहते हैं। नहीं, झगड़ा हो सकता है आपका साल में कोई 2-3 ही बड़े झगड़े हुए हों, और 24 घंटे में 24 नहीं बस 1 घंटे लड़े होंगे, हो सकता है ना। अच्छा फिर जब झगड़ा हुआ तो इब्तिदा किसने की। आप देखिएगा जब आप इस तरह की रीजनिंग करने लग जाएंगे ना, तो सब नेगेटिव सोचें निकल जाएंगी। चले मैं सुलह कर लूँ, क्या होगा, आपकी इज्जत है नफ्स की कोई जरूरत नहीं, बड़े बनते रहने दो। लेकिन आप क्या करें, आपके अंदर जितना अल्लाह का तकवा और मोहब्बत आएगी ना, और अल्लाह के नबी की बातों पर यकीन होगा, तो आप देखिए आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। इस तरह से आप खुद को भी सही करेंगे, दूसरों को भी, और आहिस्ता आहिस्ता आप अच्छे होंगे। आप देखिएगा कि जितना ज्यादा आपकी मेरी जिंदगी में खुद से बातें करना आ गया ना, अल्लाह से बातें करने के बाद, उतने हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। तो बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको पॉजिटिव थिंकर बना दे, नेगेटिविटी निकाल दें, खुद को खड़ा करें, थपथपाएं, छोटी छोटी कामयाबियों पे खुद को थपथपाएं, अल्लाह का भी शुक्र करें, अपना भी शुक्रिया अदा करें, अपने घर वालों का, अपने साथ वालों का, बल्कि जो लोग आपको सताते हैं या दुखी करते हैं ना, उनको भी, उनका भी शुक्रिया बोलें कि उन्होंने आपको मौका दिया कि आपके अंदर एक ग्रज पैदा हुआ और आपने उस काम को किया। अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगी कि वो हमारी इसलाह फरमा दें। जज़ाकअल्लाह खैर, मैं माइक छोड़ती हूँ, आप लोग वहाँ से माइक ले लीजिए। एक छोटी सी बात कह दूँ जाते जाते, आज 27 जनवरी है ना, आप सब जानते हैं कि शायद जानते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता आप कितने को कंसर्न है, मैं दूर रह कर नहीं फीलिंग ले सकती आप लोगों की, लेकिन आई एम वेरी मच कंसर्न कि आपके अल्हम्दुलिल्लाह कुरातुल्लैन का जो घर है उसके सिर्फ 3 दिन रह गए हैं उसकी आखिरी आखिरी कामों में। अल्लाह ने चाहा तो चंद दिन बाद आप सभी उस घर के मालिक होंगे। अपनी आखिरी कोशिश कर लें सदका जारिया की, आपको पता है आखिरी वक्त अल्लाह ही आसान करता है तो आसान होते हैं, अल्लाह तो काम कर देता है, लेकिन हमारे लिए ये मौका फिर नहीं रहेगा। तो आज से इन 2-3 दिनों के अंदर जो भी इस मद में जमा कर सकते हैं कर लें, बाद में जमा तो हो ही जाएगा, लेकिन ये वक्त बाद में नहीं आएगा क्योंकि अब उसमें आपका पैसा दाखिल हो जाएगा। और बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ, जजाकल्ला खैर, मैं माइक छोड़ती हूँ, आप लोग माइक लीजिए उधर से, कुछ शेयर करें कि क्या सीखा आपने।
जब भी कोई मुश्किल हालात में आमतौर पे होता है कि साजिशें जहन में आने लगती हैं, तो आइंदा के बाद भी इंशाल्लाह अपना मुहासबा करना, उस वक्त इनको ढूंढना है और इनको निकालना है अपने अंदर से इंशाल्लाह। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जी आज का लेक्चर वाकई में बहुत अच्छा था। आपके विस्तार से हमें बहुत कुछ मालूम हुआ है कि हम अपने अंदर मनफी जो सोचे हैं उनको बिल्कुल भी ना लाएं, या जो हमारी शख्सियत है, जो हमारे अंदर है, क्वालिटीज हैं, हम उसको बाहर लाने की कोशिश करें, और जो कोई ऐसी नेगेटिव है उनको दूर करने की कोशिश करें, और अच्छाइयों को बाहर लाएं, और हम खुद को ये कोशिश करें कि हम वाकई दूसरों से बेहतर हैं। जब हम ये मुकाबला करेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, तो फिर ये हमारे लिए आसान हो जाएगा, और हम अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें कि हम अल्लाह से साथ जुड़ गए हैं, और हमारा हम अल्लाह का सहारा पकड़ें और उसी से मदद मांगें, क्योंकि दिन रात अगर हम उसका शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमें एक इतनी अच्छी इतने काबिल उस्तादा दी हैं, जिन्होंने हमें 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 वाकई वो आप इस तरह लेके जाती हैं जिस तरह एक उंगली पकड़ के हमें एक नए रास्ते और हदायत के रास्ते की तरफ लेके जा रही हैं, और हमारा फर्ज है कि हम इस पर अमल करें। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगार तो हमें इन रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ورحمة الله وبركاته.
جزاک اللہ خیر. اور ساتھی کی طرح جی سسٹر طاہرہ ہیں تو ان سے بھی شیئرنگ کروائیے. یہ سسٹر سائمہ کی شیئرنگ ہے, میرے پاس پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ ان کو بھی اس سیشن سے کیا فائدہ ہوا. الحمدللہ بہت کچھ سیکھا, کہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سے سوال جو ذہن میں تھے ان کا جواب ملا. الحمدللہ ہی جزاک اللہ خیر. ریسپشن پر ہوں تو ٹھیک ہے, اگر کوئی اور نہیں شیئر کرنا چاہے یا نہیں ہے ادھر تو پھر ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل, جی آپ نے بہت صحیح لکھا شازیہ کہ پازیٹیو تھاٹس بلڈ لاٹ آف انرجی ود ان یور سیلف. آپ جب اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کریں کوئی اچھی بات سوچیں, اور کوئی اتنا اہم نہیں ہوتا زندگی میں کہ جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے, اور کوئی بھی دنیا کی مادی چیز کیا انسان بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو پیچھے کریں. میں ابھی سوچ بھی رہی تھی کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں صحابہ کی زندگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں, شادی, نارمل لیتے تھے ہر چیز کو. کوئی مر گیا اٹس اوکے, تین دن چلو ختم, چوتھے دن شادی آگے کر دی, یہ ہو گیا, بچہ مر گیا اٹس فائن. ہم تو ایک وہ جان کا روگ بنا لیتے ہیں, کوئی بیمار ہو جائے ہماری جان پہ بنی ہوتی. اب دیکھیے صحابہ زخمی ہیں, چوٹیں پڑی ہیں, کہیں وہ جلا کے کوئی چیز لگا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, دے ڈونٹ ٹیک ٹو مچ, اتنا سیریس نہیں لیتے تھے. مجھے ایک فیلنگ آتی ہے کہ آج ہم دنیا کی چیزوں کو اتنا سیریس لیتے ہیں اور آخرت کے معاملے میں اتنے پریشان ہیں. مثال اگر آپ دیکھیے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو ہم کتنے دکھی, تو وہ نماز نہیں پڑھتا. آپ کو کیا پتا کہ ہمارے خاندان کے آدھے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں, کب کبھی ہماری زبان پہ اس کا نام آیا. لیکن اللہ نہ کرے کسی ایک دور کے بھی رشتہ دار کی بیماری کی خبر آ جائے گی نا, تو ہم اتنے دکھی کہ بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جی ہمارا دل اور دماغ کی اصلاح ہماری زندگی سنوار دیتی ہے. چلیے اللہ ہمارے معاملے سنوار دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.